हम लोग आज भगवद गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा, तो समझने का प्रयास करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते
ये यथा माम प्रपद्यन्ते
तांस्तथैव भजाम्यहम्।
तांस्तथैव
मम वर्तमानुवर्तन्ते
भजाम्यहम्।
मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते
ये यथा माम प्रपद्यन्ते
तांस्तथैव भजाम्यहम्।
तांस्तथैव भजाम्यहम्।
मम वर्तमानुवर्तन्ते
मम वर्तमानुवर्तन्ते
मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो यथा थी, ये यथा मतलब जिस प्रकार, माम मतलब मुझको, प्रपद्यन्ते मेरा आश्रय लेते हैं, ताम उनको, तामस्तथैव भजाम्यम उनको, मैं उसी प्रकार से मैं उनका भजन करता हूँ। भजन मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी फल देते हैं, और भजन का अर्थ होता है सेवा करता हूँ। जिस प्रकार से भक्त मेरी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से मैं उनकी सेवा करता हूँ। जिस भाव से, जिस प्रकार से, जिस भाव से। मम वर्तमान वर्तन्ते, वर्तम का अर्थ, वर्तमान का होता है अर्थ पथ। तो जितने भी मनुष्य हैं वे मेरे पथ का अनुवर्तन करते हैं, यानी वह मेरे ही रास्ते पे हैं, वह अंततोगत्वा मुझको ही प्राप्त करेंगे। सर्वशा का अर्थ है सभी, और पार्थ मतलब अर्जुन को एड्रेस कर रहा। समझ में आ रहा है? जो लोग जिस प्रकार से, आपके पास वो देखने के लिए फोटो नहीं है, उनकी मदद करना चाहिए भक्त को। आगे आइए। हाँ, मैंने आपको बोला था कि वो लैपटॉप साथ में रखने के लिए, उसमें टेलीग्राम इंस्टॉल करने के लिए है, वो लेके आ सकते हैं। कहाँ पे है? नीचे? ठीक है, नीचे रहने, ऑफिस में नहीं है। चलिए ठीक है। अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप में मैं फल, उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। देखिए, एक बात इससे हम श्लोक से सीखते हैं कि भगवान फल जरूर देते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि फल नहीं मिलता है, भगवान की भक्ति में देर मिलता में मिलता, ऐसा नहीं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं 8वें स्कंद में भी कि मेरी जो भक्ति है वो अमोघ है, लेकिन श्रद्धा अनुसार फल देती है। यही चीज ब्रह्म संहिता में भगवान विष्णु बोलते हैं कि जय यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, उस प्रकार से उसको फल प्राप्त होता है। यही बात चैतन्य महाप्रभु को कहा गया कि सब लोग हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो सबको अलग अलग अनुभव क्यों प्राप्त हो रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि सबकी अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। श्रील श्रीधर स्वामी जी इसको कहते हैं श्रद्धानुसारेण अर्थात इच्छानुसारेण। 8वें स्कंद में क्या किसकी इच्छा है? कोई भगवान को ब्रह्म के रूप में पूछता है, मतलब निराकार ब्रह्म के रूप में उपासना करता है तो निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करता है। कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो परमात्मा को प्राप्त करता है, और कोई भगवान के रूप में उनसे अपना संबंध जागृत करना चाहता है पूरी तरह से, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। तो जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा उसको प्राप्त हो जाता है। इस फोन को भी यूज कर सकते हैं, किसी को नहीं मिलेगा, उसके पास नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जो है रेसिप्रोकेटिव नहीं है। रेसिप्रोकेटिव मतलब आदान प्रदान नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, ये कभी नहीं होता है। इससे पहले कि हम आगे भूल जाए इस बात को, फिर मैं बोल ही देता हूं कि जब हम भक्ति करते हैं और कभी कभी हमें लगे कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। भगवान जो है वह हमेशा आदान प्रदान करते हैं। कुछ समय के लिए वह अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, यह भी उनका आदान प्रदान है, ताकि आपके धैर्य की परीक्षा लें। शुरुआत में कितने लोग यहाँ जो उपस्थित हैं उनको इससे परेशानी हो जाती है कि प्रभु कभी जब अच्छा लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। जब नहीं लगता है तो उसमें से परेशानी होने लगती है, दिक्कत होती है। मैं भी था इस प्रकार से। अब हमारी ये स्टेज है कि इस बात पे ध्यान नहीं रहता है कि आज रस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, करना ही है। और मतलब भगवान इससे प्रसन्न होंगे, गुरु की आज्ञा है, यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण होती। अगर हम भक्ति करते रहते हैं और एक नियम से चलते हैं कि रोज सुबह जब करना है रोज भक्ति करनी, तो आज कैसा लग रहा है उस पर उतना ध्यान ही नहीं होता है। वो करते करते आपको अपने आप होने लग जाए कि ये बात कभी अच्छा लगेगा कभी नहीं लगेगा, उस बात पे ज्यादा हमको प्रभावित नहीं होना है, भक्ति करते रहना ये बहुत महत्वपूर्ण बात। क्योंकि अंततोगत्वा भक्ति को सफल बनाने वाले कौन है? भगवान। अच्छा, दूसरा बात, हमारी इच्छा इस बात पे फोकस होनी चाहिए कि मेरा अंततः का जो लक्ष्य है वह भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना। हम कई बार सुन सकते हैं इस बात को, लेकिन जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें चेक करना होगा कि हम किस लिए कर रहे हैं। थोड़ा विवेक रहना चाहिए कि मुझे किस लिए चाहिए, मैं क्या क्यों भक्ति कर रहा हूँ। ये बात समझ में आती है? बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है उसका मोटिवेशन बस स्वयं अनुभव करना चाहिए। भाई आप इसलिए भी भक्ति कर सकते हैं कि डांट पड़ेगी, इसलिए भी मंगल आरती जा सकते हैं कि अरे प्रभु जी डांटेंगे, अटेंडेंस लगेगी। ये कोई बहुत बड़ा मतलब मकसद नहीं है भक्ति करने का। मेरा भगवान से एक संबंध है, उसको मुझे जागृत करना है, उसके लिए भक्ति कर रहा हूँ। तो हम अगर ये भावना से करेंगे तो हम बहुत ध्यानपूर्वक जप करेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक क्लास सुनेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, प्रगति करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा गोल वहां पे है। मैं शायद समझ रहा हूँ, मैं उम्मीद है समझ में आ रहा हूँ कि कुछ इसमें दिक्कत है ना। देखिए, जब आप भक्ति करते रहेंगे तो बहुत सारे डिवोटी मिलेंगे जो भक्ति नहीं चाहते। थोड़ी अजीब सी लग रही बात, कुछ समझाएगा इसका मतलब क्या है? अरे भक्त है लेकिन भक्ति नहीं चाहता, ये क्यों कह रहे हैं आप? नहीं सर, कोई इस श्लोक को समझने का प्रयास किया, थोड़ा मनन करेंगे, बहुत श्लोक बहुत अच्छी बात है, भक्त तो है लेकिन भक्ति नहीं चाहता, मतलब प्रेम चाहता है। नहीं, ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं। यस,
क्योंकि उनके अलग अलग मोटिव होते हैं।
यस, वो बाहर रूप से हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हृदय में उनकी इच्छा ये है कि हमें कुछ धनम धनम जनम सुंदरी इत्यादि कुछ प्रतिष्ठा ये सब रहेगी। तो अभी वो शुद्ध भक्ति नहीं चाहते। एक भक्त ने जोक किया इंग्लिश में कि एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना करी, कृष्णा टेक अवे ऑल माई मटीरियल डिजायर्स बट नॉट नाउ। भगवान मेरी सारी भौतिक इच्छाएं ले जाइए लेकिन अभी नहीं। अभी उनको मैं भोगना चाहता हूँ, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्रभाव, अलग अलग इच्छाएं। फिर मैं इसमें रिपीट कर देता हूँ, भगवान के नाम में अगर हम रस अनुभव करना चाहते हैं तो तीन चीज का ध्यान रखें। वह भगवान अपने नाम से बिल्कुल अभिन्न है, उनसे कुछ भौतिक ना मांगे, और तीसरा क्या है? ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करें। ये तीन चीज करेंगे तो भगवान की कृपा से हमें नाम में सुख प्राप्त होगा। ये निष्काम भावना बहुत जरूरी है भक्ति में। तो भक्ति के प्रभाव से तो आ ही जाती है, लेकिन अपना विवेक भी हमको रखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं दिति और अदिति के केस में, अदिति के केस में जब वह कश्यप मुनि से ऐसा संतान चाहती थी जो बलि महाराज को मारने और उनको हराने वाला हो, तो अब भी उन्हें उपदेश दिया था कि इस प्रकार का उपदेश भाव उचित नहीं है और इस प्रकार का भेद देखना उचित नहीं है। ध्रुव महाराज जब भौतिक इच्छा से युक्त थे तब भी नारद मुनि ने कहा, नहीं, तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए, ये इस जगत में चलता रहता है। तो उपदेश तो ये दिया जाता है, लेकिन अगर हृदय वो धारण नहीं कर पा रहा है तो फिर कहा जाता है ठीक है भक्ति करो, भक्ति के प्रभाव से अपने आप ही इच्छाएं नष्ट हो जाती है। तो इसका मतलब भले ही अगर हम भौतिक इच्छा से युक्त भी हैं लेकिन अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो भगवान उसको भी उस इच्छा को भी मतलब उसका निर्मूलन कर देंगे, संतुष्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद उसको निर्मूलन कर देंगे। तो वो तो है ही, लेकिन थोड़ा विवेक होना चाहिए कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं, नहीं तो प्रोसेस बहुत लंबा हो सकता है, कई जन्मों में स्प्रेड आउट हो सकता है वो चीज। शुद्ध तो हो जाएगा लेकिन बहुत समय लग सकता है। एग्जाम्पल और मैं दूंगा, एक माता जी थी, उन्होंने निरंजन महाराज से बोला कि महाराज मैं बहुत सफल हूँ, जो भी प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ और सबके लिए डोनेशन वगैरह कलेक्शन करना चाहती हूँ वो हो जाता है, तो मुझे अहंकार आ जाता है, तो क्या मुझे स्वयं त्याग देना चाहिए अहंकार या कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए? तो उन्हें उत्तर दिया कि देखिए बेहतर होगा कि आप अपने अहंकार को स्वयं त्याग दें, नहीं तो कृष्ण जिस तरह से त्याग करवाएंगे वो शायद आपको आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, बहुत खराब लगेगा। तो इसलिए भक्त को अपना विवेक जरूर रखना चाहिए। विवेक समझते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, इसका विवेक होना चाहिए, सत्संग के माध्यम, सत्संग का प्रभु जी लोगों के लिए कुछ मैट्स या कुछ सत्संग के माध्यम से कुछ कुर्सी या कुछ ला दीजिए प्रभु जी बैठने के लिए। हाँ, तो सत्संग, सत्संग के माध्यम से विवेक होता है कि हमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, और भले ही हमारा मन कुछ और बोले, हम बुद्धि के द्वारा निर्णय कर पाते हैं कि मेरे लिए ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, तो गीता भूषण, आपके जन्म आदि नित्य एवं मनोज्ञ हैं। मनोज्ञ मतलब मन को प्रसन्न करने वाले हैं। आप सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वर का अर्थ सभी को कंट्रोलर। ये मेरे द्वारा किंचित मात्र अवगत है, मतलब मैं समझता हूं, और मैंने श्रुतियों से सुना है कि अंगुष्ट मात्र होते हुए भी आप जन्मादि से शून्य ईश्वर हैं। अंगुष्ट मात्र मतलब भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में अंगूठे के साइज के बराबर हैं, फिर भी आप जन्मादि से शून्य ईश्वर हैं, अर्थात आप के जन्म नहीं होते हैं, आप कंट्रोलर हैं। इसलिए आपके विभिन्न स्वरूपों की पूजा की विधि विभिन्न होगी। ये लिंक है, समझ में आया? लिंक ये है कि जो अपने विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं उनकी पूजा भी अलग अलग तरह से होती होगी। यह मान लीजिए अर्जुन का प्रश्न हो, नोट इसमें दिया जा रहा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषस मध्य आत्मनि तिष्ठति, भगवान अंगूठे के आकार में शरीर में निवास करते हैं, कठोपनिषद। कभी कभी लोग बोलते हैं भक्ति नहीं करने के लिए कि भगवान तो सबके हृदय में है, शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है। तो उसे ये पूछो कि तुम्हें दिखाई पड़ते हैं भगवान हृदय में, और कि मैं अब जो है अभक्त बन जाता हूं, मुझे बताओ कहां भगवान हृदय में, चीरा लगाओ, भगवान तो दिखते नहीं, तो यह कैसे मालूम चला कि भगवान सबके हृदय में है शास्त्र के द्वारा। तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि भगवान सबके हृदय में है, शास्त्र की बात बोल रहे हो, और दूसरी तरफ कहते शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत, मंदिर जाने की क्या जरूरत, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, और ये क्या है, ये हम जो है इस श्लोक से सुन रहे हैं, कठोपनिषद के श्लोक है। एक इंटरेस्टिंग बात है, एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं कि खड़े हैं। आपने बोला हैं तो सही, लेकिन बैठे हैं कि खड़े हैं। तो प्रभुपाद आंख बंद किए, फिर बोले कि इस उत्तर को प्राप्त करने के लिए योगी जन हजारों लाखों साल तक तपस्या करते हैं, क्योंकि शास्त्र में ये वर्णन नहीं है कि बैठे हैं कि खड़े हैं। तो फिर प्रभुपाद ने कहा खड़े हैं, जो फोटो देखते हैं ना परमात्मा का प्रबंध बनवा खड़े होकर। तो ये एक प्रमाणिक गुरु वैष्णव का मतलब लाभ है कि इतनी गुह्य बात बता सकता है, जिसके लाखों लाखों साल वेट करना पड़ेगा वो गुरु ऐसे बता सकता है, नहीं खड़े हैं, वो हृदय में लगातार भगवान को देखते हैं। इसलिए मैं सर्वेश्वर हूं, भगवान बोल रहे हैं उत्तर में, परंतु मेरे बहुत से रूप हैं, जैसे वैदुर्यमणि होती है, और निश्चित ही मैं भक्तों पर साक्षात अनुग्रह करता हूं, अर्थात भजामी। तो भजामी का अर्थ क्या है, भगवान अनुग्रह करते हैं। क्या अनुग्रह है, जिस भावना के अनुसार वे मेरा भजन करते हैं अर्थात प्रपद्यन्ते, मैं उन पर कृपालु होने के कारण उनके समक्ष प्रकट होता हूं जैसा उनका भाव होता है, एवं शब्द और किसी भी प्रकार की भावना को निरस्त करता है। इस पैराग्राफ को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा बात भगवान टीका में बोला गया है। देखिए, हमने पहले भी समझाया था कि वैदुर्य मणि एक ऐसी मणि होती है जो विभिन्न विभिन्न प्रकाश प्रस्तुत करती है एक ही बार में। एक ही बार में व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है तो वह अलग अलग प्रकाश देती है। तो जब भक्त का भाव अलग अलग होता है भगवान के प्रति, हर भक्त का भाव अलग अलग होता है। हनुमान जी उनका भाव सीताराम लक्ष्मण हनुमान के प्रति है, अक्रूर जी का भाव उस रूप से अलग है, राधा रानी का भाव अलग है, यशोदा मैया का भाव अलग है। तो ये भाव जो है अलग अलग होने के कारण भगवान अपने अलग अलग शाश्वत स्वरूपों में अपने को विस्तारित किए हुए हैं, और उस विस्तारित रूप के द्वारा उस भक्त से वो आदान प्रदान करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, भगवान श्री राम में और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन रस के आदान प्रदान के लिए, क्योंकि हनुमान जी कोई माधुर्य भाव में नहीं है, वो तो दास्य भाव में है। तो भगवान को वह चाहे वो रुक्मिणी द्वारकाधीश को भी दिखेंगे, लेकिन उनको भगवान श्री राम ही दिखाई पड़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते थे, कौन देखते थे उनको, श्याम सुंदर। रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी गिरिराज शिला को देखते हैं, उसमें श्याम सुंदर का दर्शन होता है। तो यह भक्त के भाव के अनुसार वह अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। इस जगत में भी देख लीजिए, एक ही व्यक्ति को उनकी माँ बेटे के रूप में देखेगी, उनकी पत्नी जो है वह पति के रूप में देखेगी, उनकी बेटी या बेटा जो है वो पिता के रूप में देखेगा। भाव के परिवर्तन के कारण उसको देख, भले उसका रूप अलग नहीं दिखता है तो उसको अलग भाव से देखता है। माइक बोलिए। यस, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो है अलग अलग व्यक्ति हैं। यस,
जगन्नाथ जी की लीला में आता है कि एक भक्त जो है भगवान को गणेश के रूप में देखना चाहते हैं।
भगवान ने गणेश रूप ही दिखा दिया। यस, एक व्यक्ति जाना, मैंने सुना था कि अरे मैं तो जानता हूँ, मैं सोच रहा था कि आप परब्रह्म हैं, ब्रह्म है, तो भगवान ने इसको ब्रह्म ज्योति में लीन भी करवा दिया। तो जैसा जैसा चाहोगे वैसा भगवान अपना
को। तो भगवान ने देवताओं के रूप में अपने आप को
ये दिखाने के लिए कि देवता भी एक विभूति है भगवान की, इस प्रकार से।
तो ये जो भागवत गीता का फिर होता है कि अविधि पूर्वकम, जैसे कि जो,
हाँ वो ठीक है, एक वो भक्त को उनको देखना चाहता था गणेश जी के रूप में, तो भगवान ने लीला दिखा दिया। लीला को हमें तत्व की दृष्टि से देखना चाहिए, लीला से आप पूरा सब कुछ नहीं समझ सकते। लीला आस्वादन तभी कर सकते हैं हम तत्व ठीक से समझे। अगर तत्व नहीं समझेंगे ठीक से, तो फिर जैसे आप जानते ही हो कि भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा करी, अरे शिव जी की पूजा करी तो नारद जी के पैर भी धुलिए, तो नारद जी थे ना भगवान बन जाते हैं, सुदामा के पैर धुले, पैर धुले। तो भगवान लीला से जो कर रहे हैं वो समझना बहुत मुश्किल है। अभी हम कोई भक्त टेप चला रहे थे, बता रहे थे भगवान श्री राम की पत्नी चली गई और पत्नी को खुद अग्निदेव को दे दिए हैं, और उसके बाद रो रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं कहाँ गई सीता, कहाँ गई सीता। हाँ, अति विडम्बना, विडम्बना मतलब होता है नकल करते हैं इंसानों की तरह। तो ये ठीक है, मतलब भगवान की लीला देख के समझ नहीं सकते, भगवान की लीला सुन के हम आनंद ले सकते हैं, लेकिन पहले समझना होगा तत्व की दृष्टि से कि वो भगवान है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये भेद नहीं देखना चाहिए कि भगवान राम और कृष्ण में भेद है, या फिर क्या नाम है आपके द्वारका के कृष्ण अलग हैं और गोलोक वृंदावन के कृष्ण अलग हैं, इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये हम सिद्धांत की दृष्टि से बोल रहे हैं, रस की दृष्टि से भेद है लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, दोनों सभी विष्णु तत्व स्वयं, बल्कि वही वही व्यक्ति हैं। एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे कि भक्तों के लिए यह समझना तो आसान है कि भगवान श्री राम और कृष्ण में भेद है, ये समझना मुश्किल है कि वही एक व्यक्ति, वही व्यक्ति है। कि वैदुर्य मणि का उदाहरण जो है आप समझ सकते हो, भले अलग अलग रंग दिखा रही है, मणि तो एक ही है ना, ऐसा नहीं मणि अपने को विस्तारित करती है फिर रंग दिखा रही है, लेकिन भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं विभिन्न ग्रहों में और ये अलग अलग भक्तों से आदान-प्रदान करते हैं। तो मैं समझता हूँ समझ में आ रही होगी बात। ये कहने का अर्थ ये है, एक और बात है प्रपद्यंते का अर्थ क्या है, ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। प्रपद्यंते मतलब मेरा भजन करते हैं, और आप समझते हैं भजन का मतलब क्या होता है, सेवा, कि जिस भावना में वो सेवा करते हैं कि भगवान मेरे जो है स्वामी हैं तो उस प्रकार सेवा कर रहे हैं, या भगवान मेरे बेटे, भगवान या कृष्ण मेरे बेटे हैं, इस प्रकार से भजन करते हैं, तो भगवान भी उसी प्रकार से उनका भजन करते हैं। तो उसका मतलब क्या है, उन पर कृपालु होकर उनके समक्ष प्रकट होता हूं जैसे उनका भाव होता है। कि भगवान का भजन क्या है, भगवान का भजन समझ रहे हैं, भक्त की सेवा क्या है, भक्त क्या चाहता है, भाई सेवा का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति चाहे जिससे उसको सुख प्राप्त हो वह उसको देना। तो यहां पे बोल रहे हैं कि मैं उनका भजन करता हूं, मतलब भगवान का भक्त क्या चाहता है, क्या है, इदम ते वपुर नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या अविरस्तम के मन, ये भगवान कृष्ण ये गोपाल बाल का जो रूप है ये सदा मेरे हृदय में अंकित रहे। तो भक्ति ये चाहता है तो भगवान यही उसी रूप में वह प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये भगवान का भजन है, समझ में आ रहा। और आप देख भी सकते हैं कि इस प्रकार से फोटो आपने देखा होगा, कृष्ण जो छोटे से हैं और नंद महाराज के खड़ाऊ अपने सर पे लेकर के आते, तो कृष्ण वो नंद महाराज चाहते हैं कि बच्चे के रूप में मेरे से सेवा, मतलब मेरा आदान प्रदान करे, तो भगवान इस प्रकार से करने के लिए तैयार है। तो कमी अगर कहीं है तो हमारी तरफ से। अब यहाँ पे एक शब्द महत्वपूर्ण है, एवा। एवा मतलब यह नहीं कह सकते कि भगवान मुझसे आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, हम अगर कहीं कमी है तो हमारी तरफ से, भगवान तो पूरी तरह से आदान प्रदान करने के लिए इच्छुक है। ठीक है, यह सभी मनुष्य अपनी अनादि प्रवृत्त उपासना परंपरा से अनुकंपित होकर उस उपासना के मार्ग का अनुसरण करते हैं जिसके बहुरूप हैं और जो मुझ एक के ही बहुरूपों के लिए होते हैं। समझ में आई बात, थोड़ा सा कठिन हिंदी है इसकी। इसका अर्थ यह है कि भगवान को प्राप्त करने वाली जो गुरु शिष्य परंपरा है वह अनादि काल से चली आ रही, और उस अनादि काल से चली आने वाली परंपरा से अनुग्रहित होकर, अनुकंपित होकर, कृपा प्राप्त करके हम भगवान के स्वरूपों को शास्त्र से ठीक ठीक समझते हैं। ये सारी इक्वेशन समझ में आ रही है आपको, जैसे हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर रूप को सुनते हैं, उनके महिमा को, उनके गुणों को हम सुनते हैं, तो अब जब हम बार बार सुनते हैं तब हमारा भाव उनके प्रति आकृष्ट होने लगता है। बिना गुरु परंपरा के हम इस भगवत प्रेम को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के स्वरूप गुण इत्यादि को ठीक ठीक प्रकार से हम परंपरा में ही प्राप्त कर सकते, ये बात बोली जा रही। जैसे देखिए इस्कॉन में लोग करने लग गए, लेकिन लड्डू गोपाल की उपासना इस्कॉन में नहीं है। गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो कहते गौर निताई या गौर गदाधर या राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। अब ये लड्डू गोपाल की जो उपासना है वह है पुष्टि मार्गियों की। अब मैं जो समझता हूँ, एक कारण ये हो सकता है कि पता नहीं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक कारण ये हो सकता हो कि डीटी थोड़ा छोटा है और सेवक में आसानी होती है, शायद इसलिए कर लेते हैं। मुझे यही पता नहीं कारण क्या है, कहाँ से आ गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम गौरनिताय की उपासना कर रहे हैं तो हम वात्सल्य भाव नहीं जागृत कर सकते, ये वात्सल्य भाव में नहीं हो सकते। जैसे कि गौरीदास पंडित जी जो कि श्रीदामा है, सही बोलना चाहता हूँ, मुझे स्मरण आ रहा है, श्रीदामा है कृष्ण लीला में, तो उनके पास भी गौरनिताय के विग्रह थे और वो साक्य भाव में थे। तो ऐसा नहीं है कि गौरनिताय है आपको, आपके विग्रह है तो आपको मतलब माधुर्य भाव में ही होना चाहिए, भाव कोई भी हो सकता है। जैसे कि एक और भक्त थे भगवान दास, जहां तक मैं गलत नहीं हो रहा हूँ, तो वह मिठाई बनाते थे, मोदक थे, और महाप्रभु के प्रति उनका वात्सल्य भाव था। तो यह नहीं कह सकते, महाप्रभु चारों प्रकार के भाव को दे रहे हैं, वात्सल्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव और माधुर्य भाव। तो यह नहीं कह सकते कि अगर मुझे वात्सल्य का पोषण करना है तो मुझे लड्डू गोपाल को ही रखना होगा, ऐसा नहीं। कृष्ण बलराम को भी रख सकते हैं, बट आइडिया इज कि मतलब कहने करते हैं कि जो वाकई ट्रेंड है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में गौरनिताय की उपासना करते, लेकिन अब सबको रोक नहीं सकते, क्या कहा जा सकता। तो ये समझ में आ रहा है, जिस प्रकार से उन्हें विभिन्न परंपराओं से, जो प्रामाणिक परंपराएं चार परंपरा, उसमें वे भगवान के नाम रूप गुण लीला को स्वीकार करते हैं और उस प्रकार से वे भगवान का भजन करते हैं। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को लड्डू गोपाल की पूजा कर रहा है, लेकिन जो ये परंपरा है गौड़ीय वैष्णव परंपरा, उसमें गौरनिताय या राधा कृष्ण की सेवा। प्रभुपाद जी ने कहीं लड्डू गोपाल का विग्रह को स्थापित किया? कहीं नहीं स्थापित किया। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया या फिर गौरनेता या फिर किर्रा, इस प्रकार से। ठीक है, तात्पर्य कोई पढ़िए, दशरथ प्रभु पढ़िए, पहली लाइन बहुत सुंदर है, पढ़िए।
प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है,
बहुत सुंदर है। प्रभुपाद ने कितना सुंदर बात लिखी है भगवान, इसके मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए हर व्यक्ति चाहता है इन चार रसों में आदान प्रदान, माधुर्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में और दास्य रस में, और हो ये रहा है। इसका अर्थ समझ पा रहे ना, ये समझाना पड़ेगा। हम चाहते कोई स्वामी हो, कोई मित्र हो, कोई पत्नी हो, इस प्रकार की भावना रखता है हर जीव रखता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो स्थान है वह केवल कृष्ण के लिए है और बाकी लोग उसमें फिट नहीं हो रहे हैं। आप कहो कि मेरा मित्र बड़ा अच्छा हो जाए, तो बेस्ट फ्रेंड तो कृष्ण ही है और उस स्लॉट में कृष्ण के अलावा और कोई आने वाला नहीं है, और हम उसमें कृष्ण के अलावा बहुत लोगों को हर जन्म में फिट करते बैठते। ये समझ में आ रहा है? हम सोचते हैं कि ये मेरा अच्छा, बहुत अच्छा मित्र है, फिर वो धोखा दे देता है। वो सोचता है ये पत्नी बड़ी अच्छी है, फिर वो धोखा दे देती है। जन्म जन्मांतर कोई धोखा नहीं देने वाला है तो है कृष्ण। ये बहुत गंभीर बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, भक्तों से जो मैत्री करते हैं उसमें हम कृष्ण को रिप्लेस नहीं कर रहे, प्लीज ध्यान दीजिए। वहां वो जो भक्त हैं उनकी मैत्री का आधार क्या है? कृष्ण की ओर उन्मुख करते हैं। लेकिन अन्य जो जगत में हम मैत्री बनाते हैं उसमें हम अपने को केंद्र में रख रहे हैं और उस रस, वो मित्र या जो भी बंधु ढूंढना चाहते हैं जो वास्तविक रूप से कृष्ण। ये बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण को विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है, भले उसको पता भी नहीं हो, और वह खालीपन जो हृदय में है वह कभी जाएगा नहीं जब तक भगवान से आदान प्रदान नहीं। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है।
भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं।
हाँ, थोड़ा समझ लीजिए इसको। देखिए, जैसे आप इस बल्ब की रोशनी को देख रहे हैं, एक कैंडल की रोशनी को देख रहे हैं, एक किसी भी रोशनी को देख रहे हैं, उसका सोर्स क्या है? बल्ब। पावर
सूर्य,
ब्रह्म ज्योति कह लीजिए, लेकिन सूर्य मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। तो जो भी प्रकाश हम ग्रहण कर रहे हैं वो केवल सूर्य का अंश मात्र है। तो अगर आप पूर्ण प्रकाश प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सूर्य को देखना पड़ेगा, ये बात बोली जा रही। तो ब्रह्म तेज भगवान का एक अंश है, परमात्मा भगवान का अंश रूप विस्तार है, लेकिन पूर्ण रूप से जो सच्चिदानंद घन भगवान कृष्ण है उनसे उनकी अनुभूति करने के लिए हमें भक्ति जागृत करनी पड़ेगी। ये जो योगी जन है वह भगवान का दर्शन तो कर पाते हृदय में, लेकिन वह सुख की अनुभूति नहीं कर पाते जो भक्तों को होती। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसको ब्रह्म संहिता के एक सॉरी ब्रह्म की प्रार्थना के एक श्लोक की टीका में लिखते हैं इस प्रकार से, ज्ञाने प्रयास उदपस, उसके आगे के श्लोकों में इस बात को उल्लेख करते हैं कि परमात्मा वाले लोग बहुत होगा तो शांत भक्त बन जाते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। भुंजे सेवा सुख, चैतन्य चरितामृत में लिखा है। तो जब 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 हमारा ये भाव उदित हो जाएगा भगवान के प्रति, तभी हम भगवान को भगवान की सेवा के सच्चे सुख को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। अन्य साक्षात्कार प्राप्त हो सकते हैं ब्रह्म का या फिर भगवान का, लेकिन वह परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। क्षमा कीजिएगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, परमात्मा का नहीं भगवान का साक्षात्कार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक वह भक्ति नहीं करता। क्या हुआ, उसको ऑफ करके ऑन कीजिएगा, उसको ऑफ करके ऑन कीजिए। यस ठीक है, कम से कम नहीं हो रहा। ओके वो वाला फोन लेके आएगा, आहूजा वाला लेके आ देगा। आप बोलिए, इसमें रिकॉर्डिंग तो आएगा। हाँ,
फलता कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं दिव्य जगत में।
आपको समझ में आ गया जो मैं बात बोल रहा था, श्रद्धा अनुसारेण अर्थात इच्छा अनुसारेण, क्या इच्छा है। इसके लिए ही हम शुद्ध भक्ति भक्तों के संग में ही कर सकते हैं। जो लोग निस्वार्थ भाव से कृष्ण का भजन कर रहे हैं उन्हीं के संग में हम हमारी इच्छाओं का परिवर्तन होता है। नहीं तो प्राय लोग सोचेंगे हरे कृष्णा कृष्णा करना है, मेरा मन ठीक रहता है, मेरी तो को बीमारी नहीं, मतलब बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है। बहुत अच्छा हमारे क्या नाम है आपका, अनंत कृष्ण प्रभु ने बताया कि कोई व्यक्ति कैसे भी नाम जप करे, जो उससे प्राप्त सुकृति होती है उसका फायदा ये है कि उसको सत्संग प्राप्त हो जाएगा। उसकी भगवान में श्रद्धा ना भी हो शुरुआत में, भगवत प्रेम ना भी प्राप्त करना चाहे, वो नाम जप कर रहा है तो उसके प्रभाव से ये होगा कि अंत तो कहता कैसे भी लेकिन उसको सत्संग प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण है भगवान मैत्रेय सॉरी उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं और अकस्मात मैत्रेय जी वहां पे आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पे कैसे आ गए, तो ये अज्ञात सुकृति उपदेश दे रहे हैं किसको, उद्धव जी को, बहुत गुह्य उपदेश है, लेकिन मैत्रेय मुनि कैसे वहां पे आ गए। मैत्रेय मुनि शुद्ध भक्त नहीं थे, वो ज्ञान मिश्रित भक्त थे, कैसे आ गए, जो भक्ति की है वह भी शुद्ध हो जाए तो उसके लिए भगवान ने व्यवस्था कर दी। तो इसलिए हरिनाम करना सदैव ही लाभकारी होता है। अब अपने जीवन में देखेंगे कभी कभी साधु संघ सहसा मिल जाता है, कुछ नहीं कर रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं थी और साधु संघ प्राप्त हो जाता है। समझ रहे मेरी बात। तो और साधु संघ जब मिल जाए, जब हम कुछ उपदेश सुने तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसको दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करे। ठीक है, मैंने क्या सिखाया यहाँ पे, इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। तो इच्छा कैसे जागृत होती है, संघ के माध्यम से। यस,
दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं जिस तरह के भक्त उन्हें चाहता है।
ये तो आप समझते ही हो, आध्यात्मिक जगत में हर भक्त अलग अलग प्रकार से सेवा करना चाहता है और भगवान उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। यस,
कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं।
बहुत सुंदर इसका अर्थ है। देखिए, भगवत प्रेम में हर भक्त एक विशिष्ट संबंध में पूरी तरह संतुष्ट रहता है। इसको लघु भागवतामृत में बहुत अच्छे से समझाया, मतलब उसको क्या कहते हैं, इसको एनालिसिस किया गया है, विश्लेषण किया गया है कि हर भक्त पूरी तरह संतुष्ट है। चैतन्य चरितामृत में भी समझाया गया इस बात को। ऐसा नहीं कि जो साक्य भाव का भक्त है वो कहे अरे भाई ये माधुर भाव तो अच्छा है तो हम प्रमोट कर जाए वहां पे। उसको यही अनुभव है कि कृष्ण मुझको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, बस वो मित्र के रूप में ही चाहता है कृष्ण। ये बात समझ में आ रहा है? तो यह बात प्रपात बोल रहे हैं कि समान रूप से उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। प्रेम सभी का है लेकिन फिर भी उसमें तारतम्यता है। तारतम्यता का अर्थ है प्रगाढ़ता, और अधिक अधिक प्रेम बढ़ता जाता है और गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, उससे कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। पढ़िएगा, मतलब किसी भी भक्त को ये नहीं लगता कि मुझे कृष्ण कम प्रेम कर रहे हैं। ये बात
भौतिक जगत में भी ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती हैं।
विनिमय का अर्थ है, विनिमय शब्द अच्छा है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। तो भगवान अपने भक्त के अनुसार, भक्त की भक्ति के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। यस,
शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं।
ये बहुत सुंदर बात है। अब किसी एक प्रवचन में बात आ रही थी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ, ये जो था ना, मेरे मृत्यु जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वह मरने के बाद मेरे पास आता है। तो श्रील विश्वनाथ शेखर ठाकुर जी कहे थे कि मरने के बाद भगवान के पास जाएगा, यह तो मतलब ज्यादा हो गया कहना। इस जीवन में यहाँ पे भी वह भगवान का अनुभव कर पाता है, यहाँ भगवान से बात कर पाता है अगर वह भगवान का प्रेमी है। आपको याद है बात कि जो रामानुजाचार्य जी की बात आ रही थी ना, कि जिस जो व्यक्ति निर्गुण हो गया, तो भगवत प्रेम प्राप्त कर लिए, वो यहाँ पे भी भगवान का अनुभव ऐसे करता है जैसे वो आध्यात्मिक जगत में कर सकता है, बशर्ते वो निर्गुण हो जाए। ये बात शास्त्री जी कुछ विरोध असंतुष्ट लग रहे हैं आप? नहीं, कुछ मन में बात आ रही थी। जैसे एक बार किसी ने पूछा कि ये तुलसी देवी, कुछ तो पूछा था, तुलसी देवी आध्यात्मिक जगत में है या कहाँ? तो प्रभुपाद जी बोले कि वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में है। मतलब आपको लग रहा है बाहर रूप से वो पेड़ के रूप में है, पौधे के रूप में है, लेकिन वो हमेशा कृष्ण प्रेम में विभोर रहती है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक कोटेशन यहाँ पे लिखा था, बोल रहे थे कि जब आपके हृदय से भोग वासना समाप्त हो जाएगी, उतना ही उतना आध्यात्मिक वस्तुओं का आध्यात्मिक स्वरूप आपके सामने प्रकाशित हो। मेरी बात समझ रहे? आंखों में हमारे हृदय में भोग बुद्धि है, तो इसलिए वस्तु हमको भौतिक रूप से दिखाई पड़ती है। और ये बात प्रमाणिक है। नरोत्तमदास शास्त्री जी का भजन याद है आपको? विषय छड़िया कबे शुद्ध हवे मन, तबे हमो हेरी बो श्री वृंदावन। वृंदावन धाम का स्वरूप हमें तभी दिखेगा जब हमारे हृदय से भोग वासना हट जाएगी। हम सभी के हृदय में भोग वासना नहीं, कुछ कुछ तो अनुभव करते हैं कि धाम अलग है, लेकिन जब एकदम समाप्त हो जाएगी भोग वासना, तब यहाँ के वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष के रूप में दिखाई पड़ेंगे, और जो भी इसके वर्णन है उस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। तो ये बात है कि अगर हम निर्गुण अवस्था में रहेंगे तो भगवान की साकार सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से
उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं।
इस तरह वे उनकी
प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलता वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते।
एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने सुना है कि कृष्ण कंदर्प कोटि कमनीय है, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है। अब थोड़ा प्रश्न कर ले जाए, आप लोगों को कामदेव कभी परेशान करते हैं?
करते ही रहते हैं।
तो फिर क्यों करते ही रहते हैं? तो फिर ये फिर कंदर्प कोटि कमनीय कृष्ण लग रहे हैं अभी? हमें दूर से अच्छा लग रहा है। तो अब आप जो हमने भी पढ़ा इससे पहले वाले पैराग्राफ में, उसके आधार पे क्या उसका उत्तर देंगे? कृष्ण हमें कंदर्प कोटि कमनीय क्यों नहीं लग रहे? वो हैं, हमें क्यों नहीं लग रहे? माइक पे बताइए। अंदर वासना भरा है। हाँ ठीक है, यह है, लेकिन यह उत्तर उतना सही नहीं है। है उत्तर सही, लेकिन कुछ और मैं सुनना चाहता हूँ जो प्रभुपाद जी ने है बोला भी। प्रभुपाद जी ने पिछले लाइन में क्या बोला देखिए, इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते। इस तरह का मतलब क्या था? शुद्ध भक्त। तो जब हमारे हृदय में भक्ति होगी तब हम भगवान के मधुरता है, मधुरता का अनुभव हम तब कर पाएंगे। अभी हम रुग्ण अवस्था में हैं, तो जो वस्तुएं बिल्कुल निकृष्ट हैं उनके प्रति हम आकृष्ट हो रहे हैं, निकृष्ट के प्रति आकृष्ट। ये हर भक्त जानता है कि शरीर में कुछ भी आकर्षण करने वाला नहीं है ना, प्रवचन भी कर सकता है, इसके ऊपर खूब एनालिसिस भी कर सकता है, लेकिन मन कन्विंस नहीं हो रहा। तो जब हम भक्ति करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए इस बात से कि हम कभी भी भोग से संतुष्ट नहीं हो सकते। चाहे मन कितना भी प्रीचिंग कर ले, हम कभी भी भोग संतुष्ट नहीं हो सकते। हम संतुष्ट या सुखी तभी हो पाएंगे जब भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान के जो भुंजे सेवा सुख, बस यही याद रखना चाहिए। भुंजे मतलब भोगता है, अनुभव करता है कृष्ण की सेवा का सुख, वही जीव को संतुष्ट करने वाला। बाकी सब कुछ तो केवल हृदय को जलाने वाली वस्तुएं। तो ये बात हम यहाँ पे क्लू पकड़ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होगी तब अनुभव होगा, नहीं तो कृष्ण सामने भी हो तो कुछ सुख नहीं होगा। जैसे कि चैतन्य भागवत में मुकुंदत कहते हैं कि भगवान दुर्योधन ने भी आपको देखा, जरासंध ने भी देखा, तो क्या उन्हें कोई सुख प्राप्त हुआ? तो और जल गए, क्रोध हुआ। कंस ने आपको देखा, कुछ सुख प्राप्त हुआ? नहीं। और यही बात हम लोगों ने एक बार चर्चा करी थी भागवत में कि भगवान जब मल्लशाला में गए थे तो मल्लों ने उनको एक मूर्तिमान मृत्यु के रूप में देखा और गोपियों ने उनको कामदेव के रूप में देखा। विभिन्न विभिन्न रसों का आदान प्रदान भगवान एक ही समय में कर रहे थे। यह बात श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्थापित करने के लिए करते हैं 1.1.2 की टीका में कि रसो वैसा भगवान ही सभी रसों के आगार हैं, वो साक्षात रस हैं। लेकिन भक्त का आदान मतलब जो जो अधिष्ठ मतलब जो अधिष्ठान है, जिसका हृदय कैसा है, उसके अनुसार उसको अनुभूति होती है। ठीक है, तो यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। जो निर्विशेष के रूप में स्वीकार करते हैं तो उनको भगवान के सच्चिदानंद सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। यस,
उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं।
क्या इसका अर्थ है? जीव सदा ही सेवक है और जब उसको परिपूर्ण सेव्य भगवान प्राप्त नहीं होते हैं तो इस जगत में वो सेवा चालू करता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये लोग मायावादी लोग कहेंगे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है और इस मिथ्या जगत में हॉस्पिटल खोल देते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। कि प्रभुपाद जी का कारण क्यों, क्या बताते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, कोई बता सकते हैं? अरे तो सिंपल उत्तर है, हाँ बोलिए। यस, जब जगत मिथ्या है, जब जगत को छोड़ दिए तो फिर ये हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं?
कुछ तो करना ही उनको, ऐसा तो
खाली नहीं बैठ सकते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि हम खाली बैठे रहे, कभी जीव खाली नहीं बैठ सकता। ये प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा दोनों जगह में, हम हमेशा सेवक हैं और हमेशा हम सेवा करते हैं। और इस जगत में केवल दो ही स्वामी हैं। शास्त्री जी बताएंगे कौन कौन से स्वामी हैं इस जगत में? दो कौन से स्वामी हैं?
तो भगवान है
और
दूसरा स्वामी
माया है। मतलब तीसरा है, पैदा ही नहीं हुआ, तीसरा पैदा ही नहीं हुआ। तो अगर और हम सेवक हैं, ये दोनों चीजों को बिठा लीजिए, हम नित्य सेवक हैं और दो ही स्वामी हैं। तो अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो तीसरा तो की सेवा नहीं कर रहे, बीच वाला तो कुछ है नहीं, माया की सेवा करेंगे। हाँ कुछ रहते हैं, इस माइक दीजिए इनका। ये बहुत डेंजरस है, हम सोच रहे हैं कि हम खाली बैठ गए तो बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। ना 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 ना, ना। कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर पूछने की जरूरत नहीं कि किसी सेवा कर रहे हो, माया की कर ही रहे हो। यस सर,
हाँ, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान को खुशी होती है, तो जब हम भगवान की सेवा हम नहीं करते हैं तो माया की सेवा करते हैं, तो क्या माया को खुशी होती है? सर,
माया को खुशी नहीं होती है, माया ये चाहती है, ये समझ लेना चाहिए। माया देवी यही चाहती है कि हम भगवान के शरणागत हो, लेकिन क्योंकि हम जो है नहीं होते हैं इसलिए वो पिटाई करती, वो नहीं चाहती यहाँ पे हम रहे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती है कि अयोग्य व्यक्ति भगवान के पास जाए, तो इसलिए परीक्षा लेती। समझ में आ रहा है? तो हमारी मदद ही कर रही है, थोड़ा सा दुख दे करके, परेशानी करके। यस,
उन्हें बैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता।
किन लोगों को? निर्विशेषवादियों को। यस,
किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं।
यस, सभी जानते हैं, हम लोग तो उतने कर्मियों से मिलते नहीं है, लेकिन जो कर्मी लोग यज्ञ इत्यादि करते थे, अब तो कोई भी नहीं करता, तो जानते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण ना किया जाए, भगवान की कुछ भक्ति ना मिलाई जाए, तो हमारा कर्म जो है वो फल नहीं देगा। क्षेमम न विंदन्ति तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमः नमो नमः। कि जितने भी कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, उससे पहला वाला श्लोक पूरा बड़ा सुंदर है। क्षेमम न विंदन्ति, मतलब उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं होता, कर्मी हो ज्ञानी हो, अगर भगवान की को समर्पित नहीं करते अपने फल तो कुछ प्राप्त नहीं होता, यह जान करके वह भगवान को का नाम उच्चारण करते, भले ही उनको जो है वो भोग प्राप्त चाहिए। तो वो यज्ञ का फल देने वाले भी भगवान ही है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, वैसे आने वाला है बात सातवें आदमी, भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं, सॉरी जो देवताओं की पूजा करते हैं वह फल भी मैं ही देने वाला हूं। उसका अर्थ क्या है, बड़ा अच्छा है। जैसे मैं कहता हूँ ये पेन उनको देना, आपको पेन किसने दिया, लेकिन वो पेन किसका है, समझ में आया। सब कुछ भगवान के द्वारा सृष्ट है, तो देवता उठा उठा कर आपको दे रहे हैं, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे ही द्वारा दिया जा रहा है, बस मैंने इनको बोला आप उनको दे देना भाई, ये बात भी। और भगवान ने वेद के द्वारा भी निर्धारित किया कि ये आपकी ऐसी पूजा करेंगे तो आप उनको ये दे देना, उससे अधिक नहीं दे सकते, समझ रहे हैं। लेकिन अधिक देना या कर्म को छोड़ करके देने की शक्ति केवल भगवान के पास, ये भक्तों के पास। पढ़िएगा।
जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं।
ये बात तब समझ रहे हैं, एक प्रकार का योगा लैडर है वो भगवान को से। अब यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हो, श्रद्धा अनुसारण अर्थात इच्छा अनुसारण। इस पूरे चैप्टर से या श्लोक के डिस्कशन से ये जरूर याद रखना, जिसकी जैसी इच्छा होती है भगवान उसको वैसा प्रदान करते जाते हैं। यस, यही बात यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं।
अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2:3:10 में कहा गया है,
अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम।
मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पुण्य सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसन कृष्ण भावनामृत में होता है।
थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है तीव्रेण भक्ति योगेना, ये तीव्र भक्ति उत्तम भक्ति से थोड़ा अलग है। देखिए उत्तम भक्ति में, उत्तमा भक्ति में साधन क्या होता है, भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और साध्य क्या होता है, भगवत का, भगवान का प्रेम। तीव्र भक्ति में साधन क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, लेकिन साध्य जरूरी नहीं है कि प्रेम हो, तीनों हो सकता है। सर्व काम मतलब कुछ भोग भी प्राप्त कर सकता है, मोक्ष काम तो समझते हैं मोक्ष चाहता है, अकाम हो गया तो मतलब भगवान का प्रेम चाहता है। तो जब अकाम है और साधन भक्ति कर रहा है या भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है तब तो वो उत्तमा हो गया, लेकिन अन्यथा जो है वह तीव्र कहा जाएगा। तो तीव्र क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वह ज्ञान और कर्म का आश्रय नहीं ले रहा, वो ज्ञान का आश्रय नहीं ले रहा, वह कर्म मार्ग में नहीं जा रहा है, लेकिन उसका साध्य जो है जरूरी नहीं है कि वह शुद्ध भक्ति हो, तो इसलिए इसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूर्य की रोशनी अगर बड़ी केंद्रित होती है तो वह तेज कार्य करती है, उसी प्रकार से जो भक्ति का मार्ग है उसमें अन्य मार्गों का सहारा ना लिया जाए तो भक्ति बड़ी तीव्रता से कार्य करती है। ये बात बताई जाए, तीव्र समझ रहे ना, इंटेंस। तो यहाँ पे पहले मैं समझा करता सोचा करता था भाई तीव्र भक्ति का मतलब होगा शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति हो रहा है तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि सर्व काम, यह तो संगत नहीं बैठता है। तो काफी समय बाद में सवाल समझ में आई, महाराज से भी डिस्कशन किया था इसके बारे में, परम पूज्य वृंदावन महाराज से, तो ये बता रहे थे कि यही ये बात उन्होंने अनुमोदन किया कि तीव्र भक्ति का अर्थ यह नहीं, का अर्थ यही है कि साधन तो आप भक्ति ले रहे हो और के साधन का आश्रय नहीं ले रहे, लेकिन साध्य आपका भक्ति नहीं है, जरूरी नहीं है कि हो। अकाम है व्यक्ति तो वह साध उसका मतलब उसके वो कुछ नहीं चाहता, भगवान से प्रेम चाहता है। तो इसलिए इस स्तर पे भी मैं कई बार इस उदाहरण को दिया हूं, आप चाहे टिम्बकटू से चले हो, जगत के इस दुनिया के किसी भी स्थान से चले, आपने एक पहला पैर उठाया और वह पैर उठाते समय, कदम उठाते समय ये इच्छा हुई कि मुझे वृंदावन जाना। आप कहाँ बैठे हैं, टिम्बकटू में, जापान में, या कहीं पे भी, बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिए। हम भक्ति की शुरुआत से ही शुद्ध भक्त हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, हमारा अगर लक्ष्य भगवत प्रेम है तो। और ये हमें बार बार सुनना पड़ता है क्योंकि इस बात को समझ नहीं पाते हम कि हमारा लक्ष्य भगवत प्रेम है कि नहीं। ये और ये सबको बार बार सुनकर नहीं, मुझे भगवान से अपने संबंध को जागृत करना, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका उद्देश्य यही है कि मुझे भगवान मुझसे प्रसन्न हो और भगवान से मेरा सब, मुझे कृपा करके इस संबंध को जागृत। चाहे हम प्रचार कर रहे हैं, चाहे आप घास काट रहे हो भगवान के लिए, कुछ कुछ भी कर रहे हो, मत परमा समझे हैं श्लोक याद है ना 11:55 का, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता। तो मत परम का, मत पर का अर्थ क्या है, भगवान को ही, भगवान से जो अपना संबंध है उसको जागृत करना ही उसके जीवन का परम लक्ष्य है। वो कर्म चाहे कुछ भी करे, चाहे तुलसी का पौधा उगाए, चाहे भगवान के लिए फूल बनाए, चाहे कुछ भी करे, मेरा प्रेम भगवान के प्रति जागृत हो जाए, इससे कम में मैं सेटल नहीं करने वाला। तो होता है ना, कुछ लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में होता है भाई इतना दोगे, अच्छा इतना करेंगे, उतना करेंगे, तो नहीं, भगवत प्रेम प्राप्ति से नीचे हमें कुछ नहीं। चाहे मेरी स्थिति अभी बहुत कम है, चाहे मैं एक ही कदम बढ़ाया हूँ, चाहे दो ही कदम बढ़ाया हूँ, ये बात रखना बहुत जरूरी, किस लिए हम हरि नाम कर रहे हैं, किस लिए भागवत श्रवण कर रहे हैं, किस लिए भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, यह उद्देश्य बहुत क्लियर रहना चाहिए। हाँ, चाहे कई जन्म लगे या कुछ भी हो, जैसे कि आप देख सकते हो माता रुक्मिणी कहती है 100 जन्म भी लगे हर जन्म में मरूंगी, लेकिन आपको ही पति के रूप में स्वीकार करना चाहती है, तो ये बात बहुत भगवान को स्पर्श करती है। पता नहीं आप मेरी बात को आई होप समझ पा रहे हैं, भगवान देख रहे कि आपकी, आपका इच्छा क्या है, कि मुझे प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान पूरा ऐसे मदद करेंगे, और जब भगवान मदद करेंगे तो फिर इस बारे में एक छोटा मैं बात कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर बात अभी चर्चा आ रही थी वो अहेतु की प्रतिहता वाली, थोड़ा समझ लीजिए इस चीज को, कि भक्ति में अगर हेतु हो तो वो अप्रतिहता नहीं रह जाती। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा, बच्चा चाहता है, उसके लिए भगवान का भजन कर रहा है, बच्चा हो गया, भगवान ठीक है अब अपने घर में रहो, आगे आएंगे। लेकिन अगर हम लोग अहेतु की भक्ति करते हैं, इच्छा यह है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, तो आज जो फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उस पर ध्यान नहीं है, उसका ध्यान यह है कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है। तो विवेक का निर्माण बहुत आवश्यक है संघ के द्वारा, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हम प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो खाएंगे पिएंगे और पतन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, भक्ति के बाद छोड़ देगा, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या क्या प्राप्त कर, क्या प्राप्त कहना चाहिए, क्या प्राप्तव्य है, क्या मुझे प्राप्त करना है भक्ति के द्वारा, वो समझ नहीं पा रहा। एक उदाहरण से समझिए, आप बहुत बढ़िया ट्रेन में बैठे हो, मान लो राजधानी में बैठ गए, अब कलकत्ता से राजधानी चली, और आपको ये पता नहीं कि मैं राजधानी में बैठा कहाँ, क्यों बैठा, कहाँ किस लिए बैठा हूं, तो हो सकता हो किसी भी स्टेशन पर उतर जाओ। ये बात समझ में आ रही है, स्टेशन का वर्णन सुन लिए, हाँ भाई मथुरा पहुंचना है, वृंदावन पहुंचना है, उससे पहले उतरने की संभावना है ना, तो बोला समोसे समोसे चाय 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 पीने उतर गए, उतने में गाड़ी निकल गई आगे। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, भक्ति कर रहे हैं कर रहे हैं, माया ने कुछ प्रलोभन दिया, साफ हो गए, एटलीस्ट उस जीवन के लिए साफ हो गए, फिर भक्ति में आए। ये एक बार नहीं हो रहा है, खूब होते हुए देखा जाता, ठीक है मेरी बात। तो मैं खाली ये कहना, अब हम चले समराइज कर देंगे, इस श्लोक भगवान में ये बताया कि हर व्यक्ति भगवान की खोज रहा है, भगवान विनिमय भी करते हैं, आदान प्रदान भी करते हैं, लेकिन भक्त की इच्छा के अनुसार, और इच्छा हमने सीखा सत्संग से प्राप्त होती है। जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के संग भक्तों का संग प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा हम इच्छा को प्राप्त करते हैं, तो इच्छा के अनुसार फिर भगवान आदान प्रदान करते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के हम अगर 2% भक्ति करते हैं तो भगवान भी 2% प्रोटेक्शन करते हैं, ये गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। बहुत बार लोग सोचते हैं कि हम 2% भक्ति करते हैं तो भगवान 2% प्रोटेक्शन देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अजामिल ने अनजाने में भक्ति करी थी, भगवान ने 100% प्रोटेक्शन दिया था, है ना, अपने दूत भेजे थे ना वहां से, तो ये मिस्टेक, ये नहीं बोला जा रहा है, बात ये बोली जा रही तुम्हारी जो इच्छा है उसके अनुसार भगवान आदान प्रदान करते हैं। कोई प्रश्न है जिज्ञासा, समझ में आ रहा है श्लोक? कभी किसी को मत बोलना कि तुमने 2% भक्ति करी तो भगवान 2% बचाएंगे, ऐसा भगवान ऐसा ना 100% बचाते, हमेशा भगवान सोचते हैं कि मुझे उसको बचाना है, वो कैसे बचाएंगे उनकी इच्छा है, लेकिन भगवान बचाते हैं, ठीक है। हाँ, मोक्ष, क्या मोक्ष का अर्थ नहीं समझ में आ रहा, मोक्ष का अर्थ समझना चाहते हैं, ये चार्ट आप देख सकते हैं, भगवान का गोलोक धाम है, भगवान कृष्ण के शरीर से, दिव्य शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म ज्योति से कहा जाता है, अच्छा चार्ट यहाँ पे है, और इसमें जाकर के जीव लीन हो जाता है, यार अब लीन होना कहा जाए या कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
मोक्ष का ऐसे दो तीन अर्थ है, एक तो अपने स्वरूप में हो जाना, मतलब भगवान का पार्षद बन जाना,
एक आराम आराम से, एक भगवान का अर्थ है, मोक्ष का अर्थ है कि भगवान के वैकुंठ धाम में चला जाना। ठीक है, चार प्रकार के ऐश्वर्य में मोक्ष होते हैं, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, भगवान के स्वरूप प्राप्त करना, भगवान के जैसा भगवान का लोक प्राप्त करना और भगवान के पास में रहना, ये हो गए चार प्रकार के वैष्णव मुक्ति, ये मोक्ष। उसके बाद होता है सायुज, उसको समझा रहे हैं,
जब सूक्ष्म शरीर और ये जो क्या होते हैं
स्थूल शरीर,
स्थूल शरीर जब नष्ट हो जाता है,
हाँ,
तो और फिर इस तो फिर हम मोक्ष की अवस्था में प्राप्त होते, तो उस समय त्रिताप नहीं,
हाँ, मतलब ये जो हमारा स्थूल शरीर है जल पृथ्वी तरह से बना वह समाप्त हो जाता है, और हमारा सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना वह भी समाप्त हो जाता है, तो दुख नहीं अनुभव होता है, तो ये जो ब्रह्म ज्योति है उसमें जाकर के जीव लीन हो जाता है। ये अर्थ सब मोटा मोटा अर्थ समझ लेना, ये अर्थ है। तो ये मोक्ष अगर चाहता है तो भी भगवान का भजन करे तो भगवान उसको दे देते। ठीक है, और कोई प्रश्न है? यहाँ पे जो मोक्ष है, जो अकामा सर्व कामो वाला मोक्ष, यहाँ पे अर्थ जो दिया जा रहा है वो यही है, ये मोक्ष का अर्थ है जो ब्रह्म ज्योति। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय।